તારીખ 14/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 572 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 101
સર્વ ભાવ વિભાવ છે ઉદાસીન ઓર અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય કો સહજ રૂપ સે આત્મા પરિણમન કરે ઉસી કો શ્રીજીને તીવ્ર જ્ઞાન દશા કહી હૈ પત્ર કે પ્રારંભ મેં તીવ્ર જ્ઞાન દશા કી પરિભાષા લિખી હૈ સર્વ વિભાવ સે ઉદાસીન હોકર જીતને ભી વિભાવ કે પ્રકાર હૈ પરિણમન હૈ ઉસસે ઉપેક્ષિત હોના ઉદાસીન હોના ઉસકે અવગણના કરના ઉસમે બિલકુલ રસ નહીં હોના
બરાબર
ઓર અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય કો સહેજ રૂપ સે આત્મા પરિણમન કર લે ઉસી કો શ્રી જીન તીવ્ર જ્ઞાન દશા કહેતે હૈ એ જ્ઞાન દશા કા સ્વરૂપ હૈ અસ્તિ નાસ્તિ દોનો સે અસ્તિ સે અત્યંત શુદ્ધ નિજ પર્યાય કા પરિણમન નાસ્તિ સે વિભાવ સે વિમુખ હો ગયા ऐसी ज्ञान दशा आए बिना कोई भी जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता ऐसी तीव्र ज्ञान दशा उत्पन्न हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती बंधन से मुक्त नहीं हो सकता ऐसा सिद्धांत श्री जिन ने प्रतिपादन किया है जो अखंड सत्य है अखंड शब्द यहाँ लिया जो अखंड सत्य है उसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं ठोस सत्य है अखंड सत्य है मैंने नक्कर सत्य है ठोस सत्य है ऐसी दशा हुई बिना कोई जीव बंधन से मुक्त हो जाए ये मुक्ति होने के पहले ऐसे ज्ञान दशा हो गए अत्यंत शुद्ध निज पर्याय को परिणमन करे यही सिद्धांत श्री जिन देव ने प्रतिपादन किया है और वह अखंड सत्य है ये परिपूर्ण सत्य है
तो अभिप्राय भाव ने केवल
जी
वितराग भाव है कि ये ना पिकेला नहीं भूमिका नहीं रहती
नहीं वितराग भाव ज्ञान दशा और ज्ञान दशा का फल मुक्ति ऐसे ज्ञान दशा और ज्ञान दशा का फल मुक्ति और अत्यंत तीव्र ज्ञान दशा मैंने मुनि दशा ऐसे मुनि दशा आए बिना कोई जीव की मुक्त पर्याय प्रकट हो जाए ऐसा नहीं बनता यानी मुक्ति का कारण की दूसरी कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए ये एक मार्ग से मुक्ति है दूसरे किसी मार्ग से किसी को मुक्ति नहीं हो सकती कुछ एक जीव से यह ग्रहण दशा का विचार हो सकने योग्य है कोई जीव इसका विचार करता है ऐसी तीव्र ज्ञान दशा का विचार भी सब जीव कर सकते हैं
नहीं
है कोई ऐसे काय क्लेश में लग जाते कोई ऐसे योग साधना में लग जाते हठ योग में लग जाते कोई कैसे लग जाते कोई कैसे लग जाते हैं ऐसी अंतरंग शुद्ध ज्ञान दशा विभाव रहित दशा वितराग दशा इसका विचार कोई एक जीव को करने से योग्य है ये मुनि दशा में बहुत सी गड़बड़ है आज
आज
मुनि दशा को संप्रदाय में क्या भावलिंगपना होता है तीव्र ज्ञान दशा क्या होती है इसका किसी को अंदाज नहीं है कृपाणु देव ने तो अपूर्व अवसर लिखा है देखो सौ साल पहले अपूर्व अवसर लिखा है बिल्कुल जैसे मुनिराज सामने खड़े हो और मेरी ऐसी दशा कैसे हो जाए, ऐसा लिखा है। उतना समझ में नहीं आता है कि भावलिंग दशा क्या होती है।
गुरुदेव ने भी बहुत वर्णन किया
है,
गुरुदेव ने भी बहुत वर्णन किया।
बहुत क्या है, गुरुदेव ने बैंकली में तो वर्णन किया है, वो तो अभी किया है, लेकिन ये तो 100 साल पहले बात प्रसिद्ध हुई है, फिर भी संप्रदाय में लोग नहीं जानते हैं। अपने यहाँ थोड़ा बहुत वो बात का प्रचार है, अपने संप्रदाय में कोई नहीं जानते। और जिसको गुरुदेव का परिचय नहीं है, ऐसे लोग भी खास इस बात को नहीं समझते हैं। वो तो बाह्य वेश देखे, थोड़ा बाह्याचरण अच्छा देखे, थोड़ा अच्छा देखे, तो भी मान लेते हैं कि नहीं कुछ है, कुछ न कुछ है, ऐसा लग जाता है।
ये वो ऐसे बोलते हैं अपने से अच्छे है करके, अपने से अच्छे ऐसा करके वो उसको ये करते हैं, ऐसा है अपना परिचय वाला भी गुरुदेव के परिचय वाला।
आप तो किसी का अपने से करना है या सिद्धांत अनुसार करना है या जिनेंद्र देव के आज्ञा अनुसार करना है। जिनेंद्र देव ने मोक्ष मार्ग में जैसे मुनिराज कहे ऐसे मुनिराज को माने, या कोई वेश धारण कर ले उसको माने, क्या करें? कोई एक जीव से एक गहन दशा का, देखो दशा नहीं लिया, एक गहन दशा का विचार कर सकने योग्य है। बहुत गहन दशा है ये, अपूर्व अवसर में जो बात आती है ना कि दे जाए पण माया थाए न रोमा, वंदे चक्री तथापि न मरे मान। बहु सुसर करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, जीवन के मरने नहीं न्यूना अधिकता, लोग नहीं जो प्रकट सिद्धि निदान, जो सिद्धि सिद्धि प्रकट कोई लोग नहीं हुए कि अच्छा हुआ। ये भी सब बात लोगों को समझाने के लिए है, इसकी गहनता या पूरी नहीं होती है। सही बात तो वो है, ये नाप तो लोगों को समझाने के लिए कि देखो मुनि को कुछ नहीं होता है, ये मुनि दशा उतनी सी भी नहीं है, इससे भी गहन है। समझाए कैसे, घर में तो लोगों के पास जो फुटपट्टी है उससे बताना पड़ेगा कि तुम फुटपट्टी जरा इसे ऐसा लगा लेते इतना माप आएगा, लेकिन गहराई में वो फुटपट्टी भी काम में नहीं आती, उतनी गहन दशा है मुनि दशा। हम देखिए ना गत सुकुमार का तो दृष्टांत आता है कि नहीं आता है, उसकी खोपड़ी जलती है। अब खोपड़ी जलती है, एक और खोपड़ी जलती है, दूसरी ओर आत्मज्ञान की श्रेणी लगती है, श्रेणी में एक पीछे एक पीछे एक पीछे गुणस्थान चढ़ते हैं, इधर खोपड़ी से लगती है और इधर गुणस्थान का आरोहण करते हैं। क्या बात होगी, कैसी होगी वो बात, इसलिए ऐसा कोई इतनी गहन दशा है, इसका माप ऐसे वितरागता का माप ऐसे नहीं बाहर से निकलता, केवल ज्ञान हो गया श्रेणी लगा करके, केवल ज्ञान हो गया। इसलिए कुछ एक जीव से ये गहन दशा का विचार होने योग्य है, वो सपने योग्य है, क्योंकि अनादि से अत्यंत अज्ञान दशा से यह जीव ने प्रवृत्ति की है। इसका कारण यह है कि खुद का अज्ञान अनादि से अत्यंत ज्ञान में ही इसने प्रवृत्ति करी की है। बाह्य धर्म की, बाह्य क्रियाकांड की, बाह्य तपश्चर्या के, वो भी अज्ञान पूर्वक ही किया है, इसलिए भीतर की स्थिति का पता नहीं चलता। और यह प्रवृत्ति एकदम असत्य और असार समझ करके उसकी निवृत्ति सूझे, ऐसा बनना बहुत कठिन है। इस प्रवृत्ति एकदम असत्य है, मैं उन मार्ग में चढ़ गया, बिल्कुल असत्य है, असार है, उसमें कुछ दम नहीं है, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, और इसकी निवृत्ति सूत्र को समझना ये बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दुराग्रह हो जाता है। जो भी प्रवृत्ति जीव करता है उसका उसको दुराग्रह हो जाता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति मार्ग श्री जी ने निरूपण किया है कि जो मार्ग आराधन करने से सुलभ अपने ज्ञान दशा उत्पन्न होती है, ये रहस्य है भक्ति का। तो ज्ञानी पुरुष का आश्रय करने रूप भक्ति, ज्ञानी के आश्रय में ही अपना कल्याण करना है ऐसा एक निश्चय होता है। तो वो मार्ग श्री जी ने निरूपण किया है, भगवान की भी यही आज्ञा है, और ऐसा मार्ग आराधन करने से सहज रूप से सहज भाव से ज्ञान दशा की उत्पत्ति हो जाएगी, जीव को मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाएगा। ये बहुत सुबह मार्ग लिया
आजी,
ज्ञानी पुरुष के आश्रय से अपना कल्याण करना, उसमें स्वच्छंद होने का अवकाश बल हो जाता है, सबसे बड़ी बात वो है। और मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होने देने में कोई सबसे बड़ा दुर्गुण काम करता है तो वो स्वच्छंद कि अपना मनमानी कर लेता है, ये भले ही शुक्रिया करता हो कुछ भी करता हो, न तो क्रम का कोई पता चलता है, न तो उसको अपना भान भी है कि मैं कहाँ हूँ, मेरी योग्यता कहाँ है, कैसी है और मुझे अब क्या करना चाहिए। वो उनको तो खुद को पता होता ही नहीं, खुद तो मरीज है, पेशेंट है।
हाजी,
खुद पेशेंट होने पर भी खुद डॉक्टर बन जाता है तो ये बड़ी आपत्ति है। इसी का नाम स्वच्छंद,
ज्ञानी नहीं लगाम जोइए।
ज्ञानी की लगाम तो होनी चाहिए, इतना ही नहीं, वो तो स्वच्छंद नहीं होने के लिए, लेकिन जिसको आश्रय भक्ति है उसको तो स्वच्छंद का अवकाश नहीं रहता, वो तो उसके आश्रय में अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, उसको फिर चिंता क्या, उसको कोई चिंता करने की तो उसको आश्रय में वो बात है कि वो जिस तरह से जो आज्ञा दे उस आज्ञा को उठाना एक आज्ञा रुचि हो जाती है। इनके वचन प्रति इतनी भक्ति आते है कि जो इनके वचन निकलते हैं उनमें से अपना प्रयोजन कितना है कैसा है उसकी सूक्ष्म दृष्टि आने से उसको वो पकड़ लेते हैं और उसके आज्ञा को अच्छी तरह उठाते हैं। अच्छी तरह मैंने अपना कल्याण हो उस तरह से उठा लेते हैं, तो फिर उनको सुगमता से मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाता है। क्यों? कि उस आश्रय से उनको इधर उधर जाने का बंध हो जाता है। जो मार्ग में लोग चढ़ जाते हैं, मार्ग नहीं मिलता है, इसका यही कारण है कि इधर उधर भी चढ़ जाते हैं। जैसा कि किसका संग करना किसका संग नहीं करना, कौन सा शास्त्र पढ़ना कौन सा शास्त्र नहीं पढ़ना, वो ज्ञानी की आज्ञा के अनुकूल हो जाता है, वो तकलीफ नहीं पड़ती। अब तो क्या करता है कि समझे नहीं कुछ और समय सार लेके बैठ जा रहे, प्रवचन सार लेके बैठ जा रहे, कोई भी बड़े बड़े आगम लेके बैठ जा रहे, अपनी तो कोई योग्यता का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं इसमें, ऐसे तो कोई काम नहीं होता है। अब वर्तमान योग्यता में किस बात की जरूरत है, इतना सूक्ष्म प्रयोजन का दृष्टिकोण साध्य हुए बिना किए बिना कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ज्ञानी का जो आश्रय है वो तो एकदम सेफगार्ड कर देता है। ऐसे कोई मुमुक्षुता एक बालक है, ऐसे बच्चा की परवरिश उनकी माँ करती है तो बड़ा हो जाता है, ऐसे ऐसे ज्ञानी है उनकी परवरिश कर लेता है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती।
तो ज्ञानी तो सामूहिक रूप से परवरिश करता है, व्यक्तिगत रूप से किधर परवरिश करेगा?
आपने कभी व्यक्तिगत रूप से शंकर संपर्क किया? अब मेरा प्रश्न है चंदू भाई, देखने लायक समझने लायक बात, कि जीवन में कभी व्यक्तिगत रूप से एकांत में जाकर के संपर्क किया? महाराज मेरे तो ऐसे ऐसे गंदे परिणाम हैं, गंदे भाव हैं, बहुत निम्न कोटि के अधमा अधम अधिकोपति सकल जगत मां, ऐसा होकर के चरण में बैठने का कभी तैयारी किया?
है?
अगर ऐसा होता तो इनकी कृपा चारों हाथ से आ जाते, दो हाथ से नहीं आते। क्या हमारी तो तैयारी नहीं, और हम कहे के ज्ञानी ज्ञानी तो मिले थे, ज्ञानी तो मिले थे, लेकिन हमारा काम तो नहीं बना है। इतना साल हम ज्ञानी का संपर्क में गए, बार बार सुन कर गए, बार बार प्रवचन सुने, लेकिन प्रवचन सुनने में थोड़े दूर बैठे, प्रवचन सुनने में पीछे बैठने में तकलीफ है, फिर उधर 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 हो जाता है।
नजीक भी बैठा तो क्या,
और वो अंतर भाव में भी रख लिया, द्रव्य से भी अंतर रखा और भाव में भी अंतर रखा। एक घंटा टकटकी लगा करके सुने क्या, तो मेरे प्रयोजन की बात कौन से आती है? देखिए एक दूसरा प्रश्न बनता है समष्टि जगत में भी, कि जब ज्ञानी को मालूम पड़ता है कोई जीव इनके व्यक्तिगत संपर्क में आता है और इनको मालूम पड़ता है कि इसकी योग्यता उतनी है और उनको इस योग्यता में इस चीज की जरूरत है, इस दवाई की जरूरत है, तो कोई ऐसा शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी कोई ऐसी बातें आ जाती हैं
जी,
तो वही दवा डोज देते हैं उस वक्त, पर लेने वाला डोज ले भी लेता है, वो प्रक्रिया जो बनती है वो किसी को पता नहीं पड़ता है, वो बनती है वो जानते हैं कि श्री गुरु ने हमको अमृत पिलाया और हमने पी लिया,
वो हमारे लिए है अमृत,
और हमारे लिए बहुत बात आई, आप तो हमारे लिए खूब बात आई, खूब कही आप तो, सब उनको मालूम पड़ता है। दूसरे को लगता है ये समष्टिगत चलता है, ये समष्टिगत चलता है,
ऐसा नहीं,
समष्टिगत भी चलता है और व्यक्तिगत भी भीतर भीतर में चलता है, वो भीतर वाला जानता है, बाहर वाला
नहीं जानता
है, ऐसा भी बनता है। दूसरी बात नहीं होना, तभी काम आने वाली बात है, हमारी कंडीशन रख के काम करना चाहे
नहीं चले,
तो ज्ञानी समझते हैं कि चलो उनको भी थोड़ी देर है, थोड़ा टाइम निकलने दो, कोई उपाय नहीं है इसका, कोई कहेंगे तो मानने वाला नहीं है, वो समझते हैं तो कहेंगे भी नहीं, क्यों कहेंगे,
जरूरत वाले पेशेंट को पहले निपटा दो, जरूरत वाले पेशेंट को पहले निपटा दो,
पहले निपटा दो,
ठीक बात, अच्छा स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण अच्छा है, सामूहिक और व्यक्तिगत का स्पष्टीकरण,
और खुद को जाना चाहिए, समीप में जाना चाहिए,
तो ऐसा है
ज्ञानी के कितने भी, जैसे गुरुदेव थे हजारों लोग आते थे, सैकड़ों तो वहां बसते थे पर हजारों तो आते थे, आवागमन गिनो तो हजारों के थे, लेकिन इसके अंतर्वासी होकर के कितने रहे जो इनको, इनके हृदय को पकड़े, ज्ञानी भी इनको अंतरंग से पकड़े, वो इनके अंतरंग से पकड़े, इतने ऐसा होकर के कितने रहे हैं, ऐसा तो कुछ दिखने में नहीं आता है,
दिखने में नहीं आता।
जैसे ये सुभाग भाई को अपना अंतर खोल करके क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो समीप है, तो गुरुदेव ने अंतर खोल करके अपनी दशा किसी को क्यों नहीं बताई, बताइए किसी को कि हमारी दशा ऐसी वर्तती है, ऐसा कभी बोले क्यों, इसकी ऐसा सुनने वाले की भी योग्यता तो चाहिए सामने, बिना योग्यता क्या कहें, किसको कहेंगे,
बेंसी की दशा कैसी बनती है ऐसा उसने वर्णन किया,
हाँ
ना, कैसा है वो
ऐसा, तो क्या है, लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ न कुछ तो समझ में आ रहा है। फिर भी इतनी पात्रता नहीं होते भी बहुत माल दिया है, लेने वाला चाहिए, देने वाले तो दे देते हैं लेकिन लेने वाले नहीं लेगा तो क्या हुआ। अगर उतनी बात नहीं कहते तो आज जो समाज की स्थिति है इससे कहीं भी उल्टी सुलटी हो जाती है। अरे एक दो साल में तो गुरुदेव के गद्दी पे वर्तमान जो लिंगाभाषी दिगंबर मुनिया है, द्रविलिंगी नहीं है कोई, लिंगाभाषी है, द्रविलिंग तो 28 मूलगुण परिपूर्ण पालन करे उसको द्रविलिंग कहते हैं, आज तो कोई एक भी ऐसे नहीं है, उसके प्रवचन चालू हो जाते संगढ़ में, ये बात हो जाती है एक दो साल में तो अगर कैंसरी नहीं होते था ये परिस्थिति अपनी थी। और देखो और जगह तो चालू हो ही गया है और जगह तो चालू हो गया है तो जब उनके हाथ में डोर रहती तो क्या होता, यहाँ चालू हो जाता
प्रवचन, प्रवचन चालू,
हाँ बोलते थे कुछ लोगों ने आकर के बात ही किया था कि अगर इसका संरक्षण नहीं होगा इस तीर्थ धाम का तो साल भर में तो यहाँ दिगंबर मुनि के प्रवचन चालू हो जाएंगे, जो संप्रदाय की हालत है दिगंबर संप्रदाय की हालत वो हालत सुन करके बन जाते, ऐसी बात है।
समष्टिगत व्यक्तिगतवाद की तो ये इसकी प्रस्तावना में आई है, इसके पहले समष्टिगत ज्ञान धन्य आराधना,
धन्य आराधना के प्रस्तावना में काफी स्पष्टीकरण दिया है, प्रस्तावना लिखी है इसमें
समष्टिगत व्यक्तिगत कौन
समष्टिगत क्या होता है
कौन समझ सकता
है कैसे क्या होना है कैसे कितने पढ़के हैं सब बात का चर्चा किया। आगे लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष के चरण में मन स्थापित किए बिना ये भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं है, जो आश्रय भक्ति जिसको कहते हैं उसको तो एक निष्ठा से ज्ञानी के मार्ग का आराधन करने का भाव आए बिना, मन स्थापित किए बिना ये भक्ति मार्ग सिद्ध होता नहीं है। दो चार पद गा लेने इसलिए कोई भक्ति मार्ग में आ गया है ऐसी बात तो कृपालु देव ने
एक निष्ठा से,
हाँ
एक निष्ठा से,
हाँ एक निष्ठा मैंने, निष्ठा मैंने श्रद्धा, एक श्रद्धा एक निष्ठा, इसमें कोई शंका की गुंजाइश
नहीं,
ऐसे एक लक्ष्य एक निष्ठा, हाँ दूसरा कोई अवकाश नहीं।
आश्रय भक्ति में बहुत पड़ा
है, आश्रय भक्ति में बहुत रहस्य भरा है वो तो उनका तो निवेड़ा हो जाता है, उसमें जो आता है उसका तो निवेड़ा हो ही जाता है, जिससे बार बार ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का जिनागम में ठाम ठाम कथन किया है, यही कारण से जिससे मैंने यही कारण से जिनागम में भी बार बार थाम थाम ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का वो लिखा है। अपने जिनागम पढ़ा ऐसा कोई कृपालु देव ने पढ़ा है अपने पढ़ा कोई कि अब हमारा ध्यान नहीं गया है, बात तो आई है हमारा ध्यान
नहीं गया है।
चौथी गाथा में आता है समय शांति पीठिका की गाथा है, ये बात पीठिका में लिया है चंद्र आचार्य ने, सेवा नसी करी
श्रुत परिचित
है, श्रुत परिचित अनुभूति सर्व ने, एक तो इस मार्ग से अपरिचित है और जिसको परिचित है उसकी सेवा नहीं किया है ऐसा कर लिया है। हम एक जगह पढ़ी थी चौथी गाथा पढ़ी थी कि बार गए थे स्वाध्याय में क्या लेना, चलो जो गाथा हाथ में आई वो ले लिया, चौथी गाथा ले लिया ग्रंथ खोलते उसमें ये सब बात है, इसमें ये बात है ऐसा लगता है क्योंकि इसमें भी है ठाम ठाम वो बात है लेकिन ध्यान नहीं जा रहा तो क्या करें।
चौथी गाथा,
हाँ चौथी गाथा नहीं टीका में समय सर चौथी गाथा मूल गाथा में नहीं, टीका में लिया है अमृत चंद्राचार्य ने निकाला है इसमें से कि तुझे तो परिचित नहीं है मार्ग, लेकिन जिसको मार्ग परिचित है उसकी सेवा तो नहीं किया है तो इसलिए तेरे को कहाँ से मिलेगा ये, हाँ क्या समझ पड़े। परिचय करो संगति करी नहीं, अपने में अनात्मग्नपणा होने से और दूसरा आत्मा को जानने वालों की संगति और सेवा नहीं की होने से आत्मस्वरूप नहीं कभी सुनने में आया, नहीं कभी परिचय में आया और नहीं कभी अनुभव में भी आया है। इसलिए भिन्न आत्मा का एकत्वपना सुलभ नहीं है, वो अमृत चंद्राचार्य की टीका में है और वो बात जयचंद जी ने भी लिया है। स्वरूप और ध्रुव से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को तो अपने से कभी हुआ नहीं है, और जिसको वह ज्ञान हुआ था उसकी सेवा कभी की नहीं थी, इसलिए इसकी बात न कभी सुनी है, न परिचय किया है, न उसका अनुभव किया है, इसलिए इसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। अपने से तो अनजाना मार्ग है, इसलिए अंतर्मुख हो पाएगा नहीं, और जिसको ये ज्ञान है उसकी सेवा में संगति में तो गया नहीं, तो कोई चांस है नहीं। कहते हैं कि इसलिए बार बार ज्ञानी की आज्ञा का आराधन करने का विनागम ने भी ठाम ठाम कथन किया है। ज्ञानी पुरुष के चरण में मन का स्थापन होना प्रथम कठिन पड़ता है, क्योंकि तो थोड़ा कठिन लगेगा, तेरा मन और जगह स्थापित हो गया है तो यहाँ से छुड़ा करके इधर स्थापित करना है तो थोड़ा कठिन लगेगा, विवेक मल और अविवेक मल का थोड़ा युद्ध चलेगा, घर्षण चलेगा, परंतु वचन की अपूर्वता से और इस वचन के विचार करने से तथा ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से मन का स्थापन होना सुलभ होता है। ऐसा नहीं होने के पहले थोड़ा कठिन लगता है, ऐसा होने से तो ये सुलभ होता है, एकांत कठिन है ऐसा भी नहीं है,
नहीं है,
लेकिन ऐसा जिसको नहीं होता है उनको कठिन लगता है और जिसको होता है उसको सुलभ लगता है। उपाय भी बता दिया है कैसे ज्ञानी के चरण में मन को स्थापित करना, ये उपाय भी बता दिया है। इसके वचन की अपूर्वता से पहली बात वो लिया है, वो अपूर्व भाव का अपूर्व मार्ग का प्रकाशन वो कर रहे हैं, उसकी अपूर्वता भाषित होनी चाहिए, लगनी चाहिए, ये कोई अपूर्व बात है, मेरे कल्याण के लिए कोई अपूर्व बात आ रही है, और उसका विशेष विचार करने से उसकी और अपूर्वता भाषित होगी, और ज्ञानी के प्रति अपूर्व दृष्टि से देखने से ये बात सीधी परमेश्वर बुद्धि में जाती है। तो मेरा आत्म कल्याण होने में देखने का दृष्टि बदल जाता है, मन स्थापन होना सुलभ होता है, फिर कोई कठिनाई ऐसे होने पर कोई कठिनाई भीतर में भी लगती नहीं। तो ऐसी दृष्टि से कभी देखा है, ऐसी अपूर्वता आई है, बस यही देखना है, ऐसी दृष्टि से देखने से तो बात ही बदल जाती है बिल्कुल।
बात बदली नहीं तो ऐसी दृष्टि से देखा नहीं।
ऐसी बात ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष है, जिसको पंचेंद्रिय के विषय में आसक्ति तीव्र होती है, वो ज्ञानी पुरुष के आश्रय भक्ति वाले परिणाम में उसका यही परिणाम उनका विरोध है। भीतर में बाहर में संयोग का विरोध ऐसा नहीं बोले। और जिसको सर्वार्पण बुद्धि से भक्ति आती है उसको तो वैसे ही पंचेंद्रिय विषयों का निरस्पणा आ ही जाता है, टिक्के हो ही जाते हैं, तो उनको कोई अवरोध होता नहीं है।
ये इसका मेजरमेंट है।
हाँ
सही मेजरमेंट।
हाँ सही मेजरमेंट। का झुकाव नहीं होगा, बिल्कुल फिजिकल पोजीशन होती है। जब उंगली ऐसी है तो ऐसी नहीं है, ऐसे होते ऐसी नहीं है, सीधी बात है। दशा तो क्रम से होती है, संसार में भी देखा है कई लोगों को सभी प्रकार के अनुकूलता होती है, खाने पीना मौज मजाक पैसा आराम करने का, लेकिन पैसे के पीछे इतने लग जाते हैं, इतने लग जाते हैं कि सब जो इनके जो जितने पैसे कमाने पर जितने भी साधन जो घर में ला रखे हैं उसका उपयोग करने की उसको फुर्सत
नहीं
मिलती, उसको वो निरस हो जाता है, पैसे के पीछे निरस हो जाता है कि नहीं हो जाता है। मुंबई में एक डॉक्टर था, ऐसे तो पिताजी के टाइम से अच्छा कमाया हुआ, बहुत काफ़ी मात्रा में पैसे थे, वो इकलौता लड़का था, वो पढ़ते पढ़ते कोई सिविल मैरिज कर लिया किस लड़के से, लड़के ने तो ये सोचा कोई पैसा वाला बहुत आदमी है, मर्सिडीज लेके आता है कॉलेज में, हाँ तो फिर अपने को तो ठीक है, वो धंधा में इतना घुस गया तो उसको उसको तो रात्रि को भगना पड़े, कभी भगना पड़े इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं था उसको, तो मैटरनिटी होम चलाता था, अब डिलीवरी कब किसको आएगी इसका क्या भरोसा है, तो उसको तो इतना भगना पड़े रात दिन धंधा, डॉक्टर, शाम को आवे तो भाई हॉस्पिटल पे या उसके क्लिनिक पे कुछ फुर्सत हो तो घूमने को चले, लेकिन उनको फुर्सत हो गई तब तो ना लाइन लगी है माता चैम्बर के बाहर, वापस चले जाए, देख भैया तो फिरा हुआ है वहाँ, इसको तो सामने देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो जो इनके जो पंचेंद्रिय के विषय एक पैसे के प्रति उतना झुकाव है जिसका, वो भी इनका रस नहीं लेता है, तो ये तो आत्मकल्याण का परम श्रेय का जिसको झुकाव हो गया उसको तो दूसरे बाह्य पंचेंद्रियों के विषय में कोई अवरोध वाले परिणाम हो जाए ऐसा बनता
नहीं।
सहज रूप से ऐसे दूसरे को तो ऐसे रस ठंडा करना में पसीना आ जाए तो उनको तो ऐसे तो इसको तो सहज मात्र में ठंडा हो जाता है, इतना काम आसान हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के आश्रय में विरोध करने वाले पंच विषय आदि दोष में ये दोष होने के साधन से यानी बाह्य प्रसंग से जैसा जितना हो सके उतना दूर रहना, इन निमित्तों से भी दूर रहना, ज्यादा परिचय में जाना
नहीं
है, और प्राप्त साधन में भी उदासीनता रखना। जैसे अच्छे अच्छे भोजन आ सकते हैं हमारी थाली में, लेकिन उदासीनता रख लेना, प्राप्त हो गए तो उदासीनता रख लेना, अपने भाव से तो उनके समीप जाने का सवाल नहीं है, लेकिन प्राप्त हो तो भी उदासीनता रखना। अथवा यह साधनों में से अहम बुद्धि छोड़ करके रोग रूप जान करके प्रवृत्ति करना चाहिए। क्या है कि ऐसे साधन ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरी मेरे अधिकार के हैं, इसलिए मेरे हैं। एक तो ये अपने पर छोड़ने की बात है, दूसरा अपने परिणाम में पूर्ण वितरागता नहीं है, मुमुक्षुता है। तो वृत्ति जाती है जो कुछ मात्रा में जाती है, खाने में पीने में और में जो है, तो ये एक मेरा रोग है जो तो पीड़ा देता है मुझे। क्या
रोग?
रोग जाने तो रस नहीं लेगा, रोग जाने गया तो रस नहीं आ गया। एक भाव रोग है, इसकी मुझे पीड़ा और आकुलता होती है और उसको जैसे कैसे भी मुझे मिटाना है, तो उसमें रस आएगा। क्या रोग में रस आता है किसी को? रोग में रस आएगा। रोग रूप जान करके प्रवर्तना चाहिए। अनादि दोष का ऐसा प्रसंग में विशेष उदय होता है। क्यों? कि ऐसे प्रसंग भोग भोग के आते हैं तो उसको तीव्र रस आ ही जाता है, वो तो अनादि से है, सहज रूप से तो बह जाता है परिणाम तो। इसलिए अनादि दोष का ऐसे प्रसंग में विशेष उदय आता है, इसलिए ऐसे प्रसंगों को हो सके उतना टाल देना। क्योंकि आत्मा यह दोष को छेदने के लिए अपने सन्मुख लाता है कि वह स्वरूपांतर करके उसे उसको आकर्षित करता है, जागृति में शिथिल करना कर देता है, कर डालता है और अपने विषय एकाग्र बुद्धि करा देता है। क्या है? जब कोई आत्मा अपने दोष को टालने के लिए तैयार होता है तो इसको उदय भी ऐसा आएगा कि व्यामोह होने का उदय आने लगेगा। मोह छोड़ने का वो प्रयत्न करता है तो बारहवें प्रसंग ऐसा आएगा कि उसको मोह हो जाए, इनके वहां ये इनके इम्तहान का काल है। सारे साल पढ़ा तो 12 महीने के बाद उसकी परीक्षा लेंगे, इम्तहान होगी कि नहीं होगी। इसे वो प्रयत्न में चलता है, प्रयत्न में चलता है, प्रयत्न में चलता है, उसमें कोई ऐसा उदय आएगा तो इसकी परीक्षा काल है। तो स्वरूपांतर करके वेश बदल करके सामने आ जाएगा, तुम इसको छोड़ता है तो मैं इस तरह से आऊंगा, इस दरवाजे तुमने बंद किया तो मैं वो दरवाजा से आता हूँ। ऐसा बहु रुपया है तो वेश बदल के आएगा फिर से। क्योंकि आत्मा यह दोष छेदने को अपने सन्मुख लाता है। क्या? अवलोकन करता है, सन्मुख लाता है तो स्वरूपांतर करके, रूपांतर करके, वेश बदल करके उसको आकर्षित करता है, उसकी जागृति में शिथिलता ला देता है या अपने इसमें अपने में एकाग्र बुद्धि, एकता बुद्धि करा देता है।
सन्मुख लाता है, दोष को सन्मुख लाता है।
जैसे दोष को सन्मुख लाने में ऐसा है कि प्रयोग करता है, ऐसा वेदना का, दूसरा का, तीसरा लाता है या अपने चिंतन में, अवलोकन में, तो ऐसे ही चला जाता था, उसको सन्मुख लाता है बराबर। तो फिर कोई दूसरे दूसरे रूप में संयोग बन जाता है, दूसरे दूसरे प्रकार उदय के आ जाते हैं। जैसा प्रसंग नहीं चाहते ऐसा प्रसंग सामने आने लगता है, ऐसा।
एक प्रसंग को फेस करता है तो फिर दूसरा प्रसंग आ जाता है।
अंदर में खोज खोज करके उसको निकालना है, सूक्ष्म में सूक्ष्म उसको भी पकड़ता है, अवलोकन करता है। तो ऐसे तो वो सन्मुख लाते हैं, बार में कोई ऐसे प्रसंग हो के ज्यादा बन जाता भी है तो क्या है कि किसी न किसी प्रकार के जो पुण्य है ना वो उदय में आने लगते हैं, पुण्य के उदय आते हैं। तो फंसता है कहाँ जी?
उसी में फंसता है,
पुण्य के उदय में फंसता है, अनुकूलताएं बनने लगती है, पुण्य का योग बनने लगता है, तो रूपांतर से वो मोह करा देता है उसको, या अपने प्रयत्न में शिथिलता करा देता है, जागृति कम हो जाती है, ऐसा बनता है। मुमुक्षु भूमिका में ऐसी गड़बड़ हो जाती है, पहले तो बहुत जागृत थे, अब तो हमारे परिणाम ऐसे हो गए कि बहुत शिथिल हो गए हैं, ऐसा बनता है इस सब प्रकार बहुत बनता है। मैंने छूटना चाहता है तो ऐसे जल्दी से वो छूटे ऐसे ऐसा नहीं भी बनता है, ऐसे कई प्रकार बनते हैं बार बार, भीतर में बाहर में भीतर में, तो जो बहुत जागृत है, अच्छी तरह जागृत है, एक धुन में लगा है, एक निष्ठा में लगा है, वो तो फटाफट हटाएगा। थोड़ा भी कच्चा पक्का काम होगा तो फिर धक्का लग जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा, प्रयत्न थोड़ा डाउन हो जाएगा, योग्यता भी थोड़ी कम हो जाएगी, ये सब बनता है। दुश्मन चारे बाजू उभा छे, चारे बाजू उभा छे, बराबर जागृत रहेवानुं छे, बराबर जागृत रहेवुं जोईए, एवी वात छे।
અને આવી બી બહુ ફોર્સ થઈ છે, પછી એકાગ્રતાને કાઢવા પછી કહે છે ને પેલા ડબલ ફોર્સ થી અન્યથી કોઈ ફોર્સ વધુ આવે છે, જલ્દી જલ્દી એને કાપી કાપી નાખવું, ત્યારે ઘણો ફોર્સ આવે છે, એમાં એ વિચાર જાય છે ને ખુલ્લું છે
एकाग्र बुद्धि करा देता है। और यह एकाग्र बुद्धि ऐसे प्रकार की होती है कि वो किस प्रकार से वो अपने आप को वंचना कर लेता है, किस प्रकार से हो जाता है कि मुझे इस प्रवृत्ति से कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है थोड़ा तो खास नुकसान नहीं होगा, और क्रमशः मैं उसको छोड़ दूंगा, अभी नहीं,
अभी नहीं,
बाद में मैं उसको छोड़ दूंगा, और फिर भी इस कारण मैं थोड़ी और जागृति रखूंगा, ये सब बहाना है, ये शिथिलापन शिथिलता का बहाना है जीव को। ऐसे ये वगैरह भ्रांत दशा यह दोष करता है, इसी भ्रांति में रह जाता है तो मुझे अब कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, थोड़े थोड़े खास नुकसान नहीं है, थोड़े थोड़े उनको भी अपन निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो उसको अभी कुछ करना नहीं, नहीं है।
ये लाइन थोड़ी सी,
यह एकाग्र बुद्धि इस प्रकार की होती है कि मुझे इस प्रवृत्ति से कोई खास विशेष बाद में नुकसान होने वाला नहीं है, बाद में अनुक्रम से मैंने बाद में भविष्य में थोड़े टाइम बाद में इसको छोड़ दूंगा, फिर भी प्रवृत्ति करनी पड़ेगी तो प्रवृत्ति करते करते मैं मेरी जागृति बना रखूंगा, लेकिन प्रवृत्ति करने का तारा अभिप्राय उल्टा है, कहाँ से जागृति आएगी। ये वगैरह भ्रांत दशा यह दोष करता है, जिससे यह दोष का संबंध जीव छोड़ता नहीं, दोष का संबंध जीव छोड़ता नहीं, दोष चालू रखता है, अथवा इस दोष को वो वृद्धिगत करता है, बढ़ाता है दोष को, बढ़ाता है, ऐसा लक्ष्य उसको स्वयं को भी आ सकता नहीं है, उनके अपनी भूल समझ में नहीं आती है, और भूल ही उसको कहने में आती है, जो समझ में नहीं आवे उसको ही भूल कहने में आती है, तो उसको अपने को अपनी भूल समझ में नहीं आती है। ऐसे विरोधी साधन के दो प्रकार से त्याग हो सकता है, अब क्या करना, अभी उसका समाधान देते हैं,
सॉल्यूशन।
ऐसे प्रसंग में मुमुक्षु जीव को क्या करना चाहिए। एक तो साधन के प्रसंग की निवृत्ति, या तो एक प्रसंग में ही जाना नहीं, ऐसे प्रसंग को ही दूर से हटाना है, नहीं जाना,
साधन के प्रसंग की निवृत्ति
निवृत्ति करके मैंने दूर से उसको दूर ही रखना, इस प्रसंग को ही दूर रख लेना, एक बात। दूसरा प्रकार विचार पूर्वक इसकी तुच्छता समझाना, उसका कुछ भी विशेषता महिमा उसका वजन उसका कीमत कुछ भी नहीं है, ये तुच्छ है प्रसंग के लिए। उसमें कोई सुख है आनंद है मजा है वो है वो है, इसका कोई भी आकर्षण नहीं हो, ऐसा विचार पूर्वक समझ पूर्वक अपने मानसिक भूमिका को परिणमन की भूमिका को तैयार करना। विचार की विचार से तुच्छपना समझने के लिए समझाने के लिए प्रथम तो यह पंच विषय आदि के साधन की निवृत्ति करने ज्यादा अधिक योग्य है, क्योंकि खुद ही तो कमजोर परिस्थिति में है, इसलिए वो प्रसंग में नहीं आए वो अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे विचार का अवकाश प्राप्त होता है, मार्जिन रहता है, विचार करने का मार्जिन रहता है। उदय काल में तो विचार करने का समय इन बच्चा नहीं है, तो इसलिए पहले विचार से तैयार हो जाए, अपनी भूमिका को दृढ़ कर दें, तो फिर उसके असर उदय की असर कम आएगी। ये पंच विषय आदि साधन की निवृत्ति सर्वथा कर देने का जीव को बल न चलता हो, सर्वथा उसको हटा दे ऐसा बल न हो, ऐसी परिस्थिति न हो, तो तब क्रमशः और आंशिक रूप से क्रमे क्रमे देशे देशे क्रमशः और आंशिक आंशिक रूप से इसका त्याग करना चाहिए। परिग्रह तथा भोग उपभोग के पदार्थ के अल्प परिचय करना चाहिए, ज्यादा परिचय नहीं करना चाहिए, अल्प परिचय करना चाहिए। अल्प परिचय करना मैंने इस ऐसे प्रसंग में रस अल्प हो जाना चाहिए, निरसपना हो जाना चाहिए, ज्यादा रस लेता है तो परिचय बढ़ जाता है। जैसे कई लोगों को ये पता चलता है कि भाई ये चाय बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, ये चाय थोड़ी हल्की क्वालिटी की है, इसका क्या कारण है, कि उनको चाय का स्वाद में परिचय अधिक है इसका। ये जो सब्जी बनता है ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की बनती है, ये सब्जी तो वैसे ही इसमें तो मिर्च नमक सब डालते हैं लेकिन ये क्वालिटी बराबर नहीं बनी है, ये स्वादिष्ट बनी है, अंतर कैसे मालूम पड़ता है कि इस खाने खाने में बहुत रस से परिचय किया है इसका, तो इसमें ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा गिनना चाहिए इसको अच्छा नहीं गिनना चाहिए, तो ऐसा परिचय नहीं होना भाई पदार्थों का, ऐसा परिचय नहीं होना। भले कोई समझे कि उसको कुछ खबर नहीं पड़ती है, भंडू होएगा हम तो भंडू ही मान लो, हमको गिन लो कि इनको कुछ समझ ही नहीं पड़ते क्या खाने में अच्छा क्या खाने में अच्छा नहीं, इतना कोई समझते ही नहीं है, नहीं समझते तो नहीं समझते, इसमें कुछ किसी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाई तो इतना बढ़िया बनाया था तुम बोला भी नहीं कि इतना बढ़िया है, हमको तो खबर नहीं पड़ती, क्या तुमको कुछ खबर नहीं पड़ती, नहीं खबर पड़ती, ज्यादा परिचय करेगा तो समझना पड़ेगा, तो परिचय ज्यादा करना नहीं। लेकिन कई लोग ऐसा परीक्षा कर लें, अच्छे से अच्छी चीज खिलावे और फिर अपेक्षा रखे उसकी प्रशंसा खाने वाला कितना करता है, देखे कुछ उसको खबर पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कुछ बोलता नहीं है तो फिर वो बात खुद उठाता है, आपको ये खाया कैसा लगा, तो मैं कि ठीक था चीज तो कुछ ठीक है, लेकिन नहीं नहीं अरे इसमें तो ये है वो है ऐसा डाला है बहुत बढ़िया चीज है, आपको कोई खबर नहीं पड़ती है, परिचय बिना कहाँ से करना पड़ेगा, ऐसा परिचय नहीं करना।
मेहनत किया तो थोड़ी प्रशंसा तो चाहती
है, नहीं भी चाहे तो भी कर देते
हैं। तो संसार में तो बहुत तौर तरीके अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना
नहीं है।
इसलिए परिग्रह और भोग उपभोग के पदार्थ का अल्प परिचय करना चाहिए। ऐसे करने से अनुक्रम से यह दोष फिक्के पड़ते हैं, उसका रस घट जाता है और आश्रय भक्ति दृढ़ होती है। आश्रय भक्ति दृढ़ हो गए और ये बाह्य पदार्थ का रस तीव्र हो गए, दो साथ में चलने वाली बात
नहीं है। परिग्रह मासो ले, परिग्रह मासो ले,
परिग्रह में अनुकूलता,
अनुकूलता,
अनुकूलता है। तो क्या है कि जिसको आश्रय भक्ति तीव्र होती है ना, वो अपने अनुकूलता प्रतिकूलता को भूल जाता है। वो दूसरा क्या करता है कि अपने अनुकूलता बराबर बनाए रखता है, फिर बरस रहता है इसमें से, सेवा करता है, भक्ति करता है, वो करता है, संग करता है, संगति करता है, सत्संग करता है। तो हमारी अनुकूलता नहीं थी, तो अनुकूलता नहीं थी तो नहीं आए, अनुकूलता थी तो आ गए। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन काम करना है, क्या अनुकूलता के कंडीशन में सब काम चलता है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता गौण हो जानी चाहिए। टाइम तो हो गया। इस प्रकार से ज्ञानी के वचनों का आत्मा में परिणाम होकर के तीव्र ज्ञान दशा प्रति जीवन मोक्ष होता है। आश्रय भक्ति दृढ़ होती है तो ज्ञानी के वचनों का आत्मा में परिणमन होकर के तीव्र ज्ञान दशा प्रकट होकर के जीव परिपूर्ण मुक्त हो जाता है। दो तीन पंक्ति। जीव बहुत कुछ एक बार भी ऐसी बात का विचार करता है, इसका विचार भी ज्यादा इस लाइन का नहीं करता है, इस प्रकार का। इसलिए अनादि अभ्यास का जो बल है, विपरीत अनादि अभ्यास का जो बल है, वो कम होना, उसके कमी होना बहुत कठिन पड़ता है। परंतु दिन दिन प्रति प्रसंग प्रसंग में, प्रवृत्ति प्रवृत्ति में बार बार विचार करें तो अनादि अभ्यास का जो बल है, अनादि अभ्यास का जो बल है, वो कम हो करके अपूर्व अभ्यास की सिद्धि हो करके सुलभ ऐसा आश्रय भक्ति मार्ग सिद्ध होता है। मैं सबसे पहले आश्रय भक्ति मार्ग में ले आया है, ये अम्बालाल भाई को लिखता है, जिसको बहुत भक्ति थी उनको भी ये उपदेश देते हैं। अम्बालाल भाई को तो बहुत भक्ति थी, फिर भी उनको ऐसी चिट्ठी लिखी है। ऐसे आश्रय भक्ति दृढ़ होती है तो काम अपूर्व हो जाता है और निबेड़ा आ जाता है। ये विनती है आत्मस्वरूप का प्रणाम।
परम कृपालु श्री सद्गुरु देवनो जय हो। कृष्ण मूर्ति भगवती मातनो जय हो।